हिंदी की प्रकृति, हिंदी की प्रकृति रचनात्मक और लोचदार है। उसमें अन्य भाषाओं के शब्दों को आत्मसात करने की क्षमता है। फिर भी हिंदी में ग्रंथ निर्माण की ऐसी अनेक समस्याएं हैं जिन पर विचार किया जाना आवश्यक है। मेरी दृष्टि में मुख्य समस्या लेखकों और पाठकों की मानसिकता की समस्या है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषयों को छोड़ दें तब भी समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, भूगोल आदि विषयों के लेखकों का अधिकांश वर्ग अंग्रेजी में लिखना और पढ़ना चाहता है, क्योंकि उनकी यह सोच है कि अंग्रेजी में लिखने से वे एक विशिष्ट वर्ग में आ जाएंगे और उनकी कीर्ति अखिल भारतीय स्तर की हो जाएगी। ऐसा भी संभव है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर उनका नाम लेखक के रूप में उभर सके। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के ऐसे अनेक प्राध्यापक जो लेखन क्रम से जुड़े हुए हैं अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं। उनकी मानसिकता कुछ इस तरह की बन गई है कि अगर विशिष्ट अथवा अभिजातीय वर्ग में बने रहना है, लेखक के रूप में प्रतिष्ठा अर्जित करनी है तो अंग्रेजी में लिखना है, लेकिन अगर रुपए अर्जित करने हैं तो हिंदी में लिखना है, क्योंकि हिंदी के पाठक अधिक हैं। आज स्थिति यह है कि असमिया, बांग्ला, मणिपुरी, उड़िया, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, मराठी, कोकनी, गुजराती, सौराष्ट्री, पंजाबी, कश्मीरी आदि भाषाओं के पक्षधर लेखक अपनी कृतियों का हिंदी अनुवाद प्रकाशित कराना चाहते हैं। विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं के लेखक भी हिंदी में उपन्यास, कविता, कहानी आदि लिखते हैं और अखिल भारतीय स्तर पर ख्याति अर्जित करना चाहते हैं। फिर भी उनको मानसिकता हिंदी प्रगति के विरुद्ध रहती है। देश के स्वतंत्र हो जाने के इतने वर्षों के बाद भी अभिजात वर्ग तथा सत्ताकामी जनों द्वारा पोषित अंग्रेजी की रक्षा के लिए अब लोग फिर एकजुट होने लगे हैं। उनमें सबसे गहरी साजिश के रूप में भारतीय भाषाओं को हिंदी के विरोध में खड़ा किया जाने लगा है। अनेक कारणों से हिंदी की तुलना में राज्य की भाषाओं पर अंग्रेजी का दबाव अधिक है। राज्य भाषाओं को हिंदी की तुलना में विकास का अवसर कम मिलता है, इसलिए अंग्रेजी के भक्त राज्य भाषाओं के पक्षधरों के मन में हिंदी के प्रति आक्रोश को उभार रहे हैं। यह स्थिति चिंताजनक है। हिंदी वालों का यह दायित्व है कि वे इस षड्यंत्र को विफल करें। इसके लिए यह आवश्यक है कि हिंदी वाले राज्य भाषाओं को पूर्ण सम्मान दें और विरोध की धारा को अंग्रेजी की ओर मोड़ दें तथा राज्य भाषाओं के शब्दों को हिंदी में पर्याप्त स्थान दें। हिंदी में जब राज्य भाषाओं के शब्दों का आदान प्रदान होगा तब आपसी समझौते की संभावनाएं अधिक बढ़ जाएंगी। वास्तव में हिंदी के संबंध में पूरी मानसिकता अथवा सोच में परिवर्तन लाना चाहिए। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी में ऐसी कृतियों का अध्ययन होना चाहिए जो सच्चे अर्थों में जनभाषा में हो और अधिक से अधिक लोगों को समझ आ सके। महात्मा गांधी ने इस संबंध में ठीक ही कहा था कि हिंदी भाषा वह भाषा है जिसको उत्तर में हिंदू और मुसलमान बोलते हैं और जो देवनागरी तथा फारसी लिपि में लिखी जाती है। यह हिंदी पूर्णतः संस्कृतमय नहीं है और यह पूर्णतः फारसी शब्दों से लदी है। देहाती बोली में अपनापन है, वह ना लखनऊ के मुसलमान भाइयों की बोली में है, ना प्रयाग के पंडितों की बोली में पाया जाता है। भाषा वही श्रेष्ठ है जिसको जनसमूह सहज से समझ लें। देहाती बोली सब समझते हैं। भाषा का मूल करोड़ों मनुष्य रूपी हिमालय में मिलेगा और उसमें ही रहेगा। हिमालय से निकली हुई गंगा अनंत काल तक बहती रहेगी, ऐसा ही देहाती हिंदी का गौरव रहेगा। हिंदी लेखन में जहाँ लेखकों और पाठकों की मानसिकता में परिवर्तन लाना आवश्यक है, वहीं हिंदी भाषा के संरचनात्मक स्वरूप को भी आधुनिक विषयों और संदर्भों के अनुरूप ढालना चाहिए। इसे हिंदी में ग्रंथ निर्माण का कार्य सहज हो जाएगा, क्योंकि हिंदी की प्रकृति में वे गुण हैं जिनसे किसी भी विषय अथवा ज्ञान के किसी भी क्षेत्र में ग्रंथ निर्माण किया जा सकता है। डॉक्टर सुनीत कुमार चाटुलिया ने इस संदर्भ में अपना मत व्यक्त करते हुए निम्नलिखित तथ्यों को रेखांकित किया है। पहला, कुछ दृष्टि से यह सभी भारतीय विषयों के निकट है, आर्य भाषाओं के रूपों में और शब्दों के रूपों में दोनों की ही दृष्टि से और द्रविड़ भाषाओं से। वाक्य विन्यास शब्द और मुहावरों की आधारभूत दृष्टि से। दूसरा, सभी महान अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को प्राप्त भाषाओं की भांति हिंदी भी अब राज्य और देश के समुचित दायरे को छोड़कर विश्वकोशीय स्थिति को प्राप्त कर चुकी है। यह एक अत्यंत उदार और युक्तियुक्त नीति का अनुसरण करने वाली भाषा है। तीसरा, हिंदी की शैली संक्षिप्त तथा लाघवपूर्ण और अलंकृत अथवा विस्तारपूर्ण दोनों ही प्रकार की हो सकती है। हिंदी अथवा हिंदुस्तानी एक ओजपूर्ण पौरुषयुक्त भाषा है। चौथा, करना बनाना आदि के साथ संज्ञा जोड़कर हिंदी अनेक भावों को व्यक्त कर सकती है। इससे क्रिया के रूप में घट जाते हैं तथा संज्ञा के प्रयोग के कारण क्रिया में स्पष्टता रहती है। पांचवा, हिंदी की ध्वनियाँ नपी तुली और सुनिश्चित भी हैं। कश्मीरी अथवा पूर्वी बांग्ला की तरह स्वर परिवर्तन की दुहरता नहीं है, कठिन ध्वनियाँ भी नहीं हैं। छठवां, हिंदी के व्याकरण के रूप में अन्य भाषाओं की तुलना में कम है। बोलचाल का हिंदुस्तानी व्याकरण तो केवल एक पोस्ट कार्ड पर लिखा जा सकता है।